पृष्ठ संख्या 110, अध्याय 5। अध्याय शीर्षक है धार्मिक चेतना या रिलीजियस कॉन्शियसनेस। इसके अंतर्गत शीर्षक है विषय प्रवेश। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक जीवन को 3 पहलुओं में विभाजित किया है, भावना, ज्ञान एवं संकल्प या इच्छा। यद्यपि मानसिक जीवन के तत्वों का विभाजन प्लेटो और अरस्तु ने भी किया है, परंतु सर्वप्रथम भावना, ज्ञान एवं संकल्प के रूप में मानसिक जीवन का विभाजन टिटेंस ने किया है। कांट ने इसका समर्थन भी किया, जिसके फलस्वरूप यह वर्गीकरण आधुनिक युग में भी प्रचलित है। जब हम चेतना शब्द का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं तीनों वृत्तियों के संगठित स्वरूप की झलक मिलती है। वैसे सामान्य रूप से चेतना का अर्थ ज्ञान होने या अभिहित होने से लिया जाता है, परंतु यह एक व्यवहारिक मान्यता है। मनोवैज्ञानिक विवेचन के अनुसार चेतना का तात्पर्य मानव व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं के संगठित स्वरूप से है। मनुष्य में जिस प्रकार आत्मचेतना है, उसी प्रकार उसकी अपने बाह्य परिस्थितियों की भी चेतना होती है। सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक चेतना का उल्लेख इस प्रसंग में किया जा सकता है। यदि मनुष्य में अन्य विषयों की चेतना रह सकती है तो धर्म के विषय में भी चेतना वर्तमान हो सकती है। अतः मनुष्य की धार्मिकता के बोध को धार्मिक चेतना कहा जाता है। जैसे नैतिक चेतना से मनुष्य में नैतिकता का बोध प्रकट होता है, वैसे ही धार्मिक चेतना से धार्मिकता का बोध होता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि मनुष्य के भीतर धर्म की ओर अग्रसर होने में कौन कौन से मानसिक तत्व कार्य करते हैं। अब तक धार्मिक चेतना के विभिन्न पहलुओं के विषय में बहुत बड़ा विवाद रहा है। कुछ विचारकों के अनुसार धर्म का आधार मानसिक जीवन का भावनामूलक तत्व ही प्रमुख है, और कुछ के अनुसार ज्ञान मूलक तत्व। कुछ लोग ऐसे हैं जो संकल्प को ही धर्म का मूल तत्व समझते हैं। धर्म की विभिन्न परिभाषाओं से भी यही प्रकट होता है। अतः धार्मिक चेतना के प्रसंग में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या धार्मिक चेतना भावना का विषय है? क्या धर्म का आधार ज्ञान है? और क्या धार्मिकता के लिए संकल्प आवश्यक है, आदि। परंतु प्रोफेसर गैलवे, फ्लिंट, मार्टिन्यू एवं जेम्स द्वारा धर्म की दी गई परिभाषाओं द्वारा यही प्रकट होता है कि धार्मिक चेतना में केवल एक पहलू ही तत्व का काम नहीं करता। इनकी परिभाषाओं में विभिन्न पहलुओं पर बल दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न तत्वों का धर्म के लिए सापेक्षिक महत्व है। अगला शीर्षक है धार्मिक चेतना का स्वरूप। धार्मिक चेतना धर्म का मूल आधार है, धर्म की ओर अग्रसर करने की एक शक्ति है। धार्मिक चेतना में मानसिक जीवन के तीनों पहलू आवश्यक हैं। पृष्ठ संख्या 111। किसी एक पहलू में धर्म को आबद्ध करना समीचीन नहीं ज्ञात होता। वास्तव में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व धर्म में प्रकट होता है। धर्म में एक सत्ता के प्रति विश्वास, प्रेम एवं प्रार्थना, निवेदन तथा पूजा की इच्छा वर्तमान रहती है। भावना धार्मिक चेतना का वह तत्व है जो व्यक्ति में सत्ता के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण उत्पन्न करता है। ज्ञानात्मक तत्व सत्ता के प्रति विश्वास और आस्था उत्पन्न करता है तथा संकल्प द्वारा मनुष्य सत्ता के लिए क्रियाशील होता है। अपने कर्मों द्वारा सत्ता को आकृष्ट करने का प्रयास किया जाता है। कर्मकांड और पूजा विधान इसी तत्व के कारण ही धर्म में देखे जाते हैं। अस्पष्ट है कि पूर्ण धार्मिकता इन तत्वों में से केवल एक ही के होने से संभव नहीं है। धर्म की पूर्णता आस्था, प्रेम तथा क्रिया तीनों के संगठित रूप में ही निहित है। जिस प्रकार मानसिक जीवन की व्याख्या केवल ज्ञान या भाव या इच्छा के द्वारा नहीं कर सकते, उसी प्रकार धार्मिक चेतना की व्याख्या केवल भावना या ज्ञान या संकल्प के आधार पर नहीं कर सकते। धर्म में तीनों तत्व विद्यमान रहते हैं। धर्म भावना, ज्ञान तथा संकल्प तीनों द्वारा प्रकट होता है। इसीलिए धर्म को संपूर्ण मानव मन की प्रतिक्रिया कहा गया है। इस अर्थ में धार्मिक चेतना के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक कहा जा सकता है। इसमें मानव जीवन का समस्त पहलू सन्निहित रहता है। परंतु यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यद्यपि धार्मिक चेतना के विभिन्न पहलुओं, भावना, ज्ञान तथा संकल्प के पृथक तत्व से धार्मिकता पूर्ण अवश्य नहीं होती, तो क्या तीनों तत्व समान रूप से धर्म के लिए आवश्यक हैं या इनका सापेक्षिक महत्व है? दूसरे शब्दों में धार्मिक चेतना में कौन सा तत्व विशेष महत्वपूर्ण है? अगला शीर्षक है, क्या धर्म में भावना मूलक तत्व प्रधान है? धार्मिक चेतना के लिए भावात्मक पक्ष को अधिक महत्व प्रदान करने वाले अनेक विचारक हुए हैं। मैक्टागर्ट के शब्दों में भय मिश्रित श्रद्धा ही मौलिक धार्मिक भावना को प्रकट करने में समर्थ है। यही नहीं, आश्चर्य, प्रशंसा, रुचि, आदर एवं प्रेम की भावना को भय से कम नहीं कहा जा सकता। स्लायर मार्वर के अनुसार ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना ही धार्मिकता का प्राण है। लाटजे के अनुसार भी धर्म का मूल आधार भावना ही है। जेम्स ने भी धार्मिकता के लिए भावना को प्रधान तत्व माना है। प्रारंभिक धर्म का मूल स्रोत भावना को ही कहा जा सकता है। विशेष रूप से भय और प्रेम की भावना धर्म में महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक धर्मों में किसी जीव आत्मा से भयभीत होकर आदिम मानव धार्मिकता प्रकट करता था। इसके उदाहरण प्रेत सिद्धांत और टोटमवादी धर्म में देखे जा सकते हैं। अनेक प्रकार के अंधविश्वास भय की भावना से ही उत्पन्न हुए हैं, जो धर्म के अंग के रूप में काम करते हैं। भय से ही ईश्वर या सत्ता के प्रति समर्पण की भावना देखी जाती है। मनुष्य शरणागत होकर सुरक्षा की याचना करता है। आधुनिक युग में ह्यूम ने भी भय की भावना को ही धार्मिकता का प्रेरणात्मक तत्व माना है। परंतु गैलवे के शब्दों में यद्यपि भय एक कारण अवश्य है, फिर भी निश्चित रूप से यह धर्म का पर्याप्त कारण नहीं है। भय की भावना वास्तव में अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसका संबंध इच्छा या क्रिया से अवश्य ही होता है। मनुष्य किसी शुभ के नष्ट होने से ही डरता है, चाहे वह भय जीवन, स्वास्थ्य तथा संपत्ति के नष्ट होने का ही क्यों न हो। मनुष्य तब तक भयभीत नहीं होगा जब तक कि वह वांछित वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करेगा। धर्म में स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। पृष्ठ संख्या 112। मनुष्य के भय की व्याख्या नहीं की जा सकती जब तक कि उसके शुभात्मक पक्ष पर न ध्यान दिया जाए, क्योंकि मानव का लक्ष्य शुभ की प्राप्ति ही है। इसी के कारण भय भी है। अतः भय के संवेग के रूप में भावना को धर्म का मूल आधार नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भावना के आधार पर धर्म की एकांगी व्याख्या होती है। इस प्रकार स्लायर मारवार की पूर्ण समर्पण की भावना की भी आलोचना की जा सकती है। इस भावना में भी संकल्प तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यक्ति समर्पण की भावना में शारीरिक सौख्य की भी कामना करता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक मनोवृत्ति का निर्धारण सत्ता की पहचान के अभाव में भी नहीं हो सकता। जिस सत्ता पर व्यक्ति निर्भर होता है उसका ज्ञान भी आवश्यक है। अतः धर्म में केवल भय या समर्पण की भावना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संकल्प और ज्ञान तत्व भी आवश्यक है। भावना के अंतर्गत भय का जितना अधिक महत्व प्रारंभिक धर्मों में देखा जाता है, उतना ही महत्व धार्मिकता की प्रगाढ़ता में प्रेम का भी देखा जाता है। प्रारंभिक धर्म में व्यक्ति जहां अपने को अनेक शक्तियों पर निर्भर करता था, वहां धर्म की उच्च भूमि में वह स्वतंत्र होकर आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करने लगा। इसलिए भावना का क्षेत्र धर्म की दृष्टि से व्यापक हो गया। गैलवे के शब्दों में भावना गहनतम और वैयक्तिक वस्तु है। धर्म का यह गहन स्रोत और केंद्र है। धार्मिक चेतना भावना के अभाव में निरर्थक और यांत्रिकता मात्र रह जाती है। भक्ति, प्रेम और सत्ता के प्रति लगाव धर्म का सर्वस्व है। धार्मिक भावना की प्रगाढ़ता रहस्यवादी धर्मों में देखी जा सकती है। धर्म का सच्चा रूप रहस्यवाद में आकर पूर्णता को प्राप्त होता है। रहस्यवादी सत्ता के प्रति प्रेम का प्रतिमूर्ति होता है। प्रेम के कारण ही वह अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहता है। धर्म में व्यक्ति अपने आराध्य से तादात्म्य स्थापित करना चाहता है। सामिप्य, तादात्म्य और अपनेपन की भावना प्रेम के अभाव में संभव नहीं है। अतः धर्म में प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए भावना धर्म का प्राण है। यहाँ तर्क और विवेचन को स्थान नहीं, भावना से ही धर्म वैयक्तिक होते हुए भी व्यापक होता है। उसका क्षेत्र व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, वरन संपूर्ण विश्व धर्ममय हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि धर्म हृदय की वस्तु है, न कि बुद्धि की। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला है भावना की गहनता के लिए संकल्प आवश्यक है। धार्मिक चेतना के लिए भावना की प्रधानता स्वीकार की जा सकती है, परंतु एकमात्र भावना ही धर्म का आधार नहीं है। भावना की प्रगाढ़ता के लिए संकल्प वृत्ति की आवश्यकता है। बिना उद्देश्यपूर्ण जीवन के भावना का व्यवहारिक मूल्य समाप्त हो जाता है। भावना की निश्चितता की स्वीकृति इच्छा पर निर्भर करती है। इच्छा से ही भावना की अच्छाई या बुराई का निर्णय हो सकता है। भावना का इच्छा से संबंध होने पर ही उसकी सत्यता तथा असत्यता का पता चलता है। इसीलिए गैलवे ने कहा है कि यद्यपि भावना धार्मिक चेतना का सब कुछ है, परंतु उच्च आध्यात्मिकता का विकास संपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर है। दूसरा है केयर्ड द्वारा आलोचना। केयर्ड ने भावना मूलक पहलू की आलोचना करते हुए कहा है कि धार्मिक चेतना की व्याख्या केवल भावना के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके लिए भावना पर्याप्त नहीं है। विवेक और बुद्धि के अभाव में भावना की व्याख्या संभव नहीं है। विवेकहीन भावना से ही धर्म में अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता का प्रादुर्भाव होता है। पृष्ठ संख्या 113। तीसरा है भावना वैयक्तिक है। धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता, इसके सामाजिक पक्ष को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। भावना आत्मगत और परिवर्तनशील होती है। यदि धर्म का यही मूल आधार होता तो धर्म में स्थिरता न देखी जाती। अतः धर्म में भावना को प्रधानता होते हुए भी इसे धर्म का सर्वस्व नहीं कहा जा सकता। अब शीर्षक है क्या धर्म में ज्ञान मूलक तत्व प्रधान है। धर्म में ज्ञान मूलक तत्व को प्रधानता देने वाले बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। इन विचारकों के अनुसार धार्मिक चेतना मूल रूप से ज्ञान पर ही आधारित है। हेगेल तथा हेगेलवादी दार्शनिक ज्ञान मूलक तत्व का पूर्णतया समर्थन करते हैं। भारतीय दर्शन में संकर ज्ञान को ही प्रधानता देते हैं। मनुष्य धार्मिक इसलिए है कि वह विवेकशील है। पशु से वह इसी अर्थ में भिन्न है। पशु विवेकहीन होने के कारण धर्म से परे है और मनुष्य विवेक युक्त होने के कारण ही धर्मशील प्राणी है। मनुष्य को अपने लक्ष्य का ज्ञान है, उसे अपने प्राप्तव्य का ज्ञान है, पूर्णतया का बोध है। धर्म में प्रगति का यही अर्थ है कि मनुष्य पूर्ण होने की चेतना से अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। आदिम धर्म में लक्ष्य के अभाव के कारण ही प्रगति नहीं देखी जाती। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आदिम धर्मों में बौद्धिक चेतना का लोप है। पुराणों का प्रादुर्भाव धर्म में ज्ञान मूलक तत्व के कारण ही संभव देखा जाता है। यही बौद्धिकता जिज्ञासा और उत्सुकता के रूप में धर्म के अंतर्गत देखी जाती है। धार्मिक परंपरा के विकास, संशोधन एवं परिवर्तन में ज्ञान व बुद्धि का ही योगदान देखा जाता है। धार्मिक अनुभूतियों की प्राप्ति के पश्चात वही सिद्धांत के रूप में प्रकट किया जाता है जो धार्मिक परंपरा तथा संस्कृति के लिए तत्व का काम करता है। गैलवे ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान मूलक पक्ष ने ही धर्म को संकीर्णता से मुक्त करके विश्वजनीन रूप प्रदान किया है। केयर्ड के शब्दों में धर्म के अनंत के प्रति समर्पण की भावना की विचार ही शक्ति प्रदान करता है। विचार ही विश्व की क्रिया का संचालन करता है। हम अपने प्रत्येक अनुभवों में कहते हैं, मैं इच्छा करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ आदि। इन सभी परिवर्तित अनुभवों में चिंतनशील और विचारशील मैं ही रहता है। इसलिए विचारशील मनुष्य ही धार्मिक होता है, न कि पशु। विचार ही अपूर्ण से पूर्ण की ओर बढ़ता है, उसी में यह शक्ति है। धर्म में वस्तुगतता बिना विचार के संभव नहीं है। अगला शीर्षक है आलोचना। धर्म में ज्ञान मूलक तत्व के महत्व को स्वीकार करते हुए भी यह कहा जा सकता है कि ज्ञान या विचार धर्म का केवल तात्विक आधार प्रस्तुत करता है। धर्म के तादात्म्य और भक्त की भावना का विश्लेषण ज्ञान मूलक पहलू से ही नहीं किया जा सकता। तर्क या विचार विश्लेषण का काम करते हैं, जबकि धर्म का मूल तत्व तर्कातीत कहा जाता है। धर्म केवल विचार या वाद विवाद का विषय नहीं है। विभिन्न वाद तथा मत मतांतर धर्म का एक ओर जहां परिमार्जन और शोधन करते हैं, वहां दूसरी ओर वितंडा वाद भी खड़ा करते हैं, जिसका फल यह होता है कि धर्म का मूल तत्व विचार के समक्ष ओझल हो जाता है। धर्म में तो प्रेम और श्रद्धा आवश्यक है। धर्म प्रेम गली है जिसमें बुद्धि की पहुंच नहीं है। इसके अतिरिक्त धर्म चिंतन तक ही सीमित नहीं है, उसको व्यवहार में भी आना है। धर्म का एक व्यवहारिक स्वरूप भी है जो संकल्प पर ही निर्भर है। पृष्ठ संख्या 114, शीर्षक है, क्या धर्म में संकल्प मूलक तत्व प्रधान है? कुछ विचारकों के अनुसार भावना और ज्ञान की अपेक्षा धार्मिक चेतना में संकल्प का अधिक महत्व है। कांट ने शुद्ध प्रज्ञा की अपेक्षा व्यवहारिक प्रज्ञा को अधिक महत्व दिया है। ईश्वर ज्ञान केवल शुद्ध तर्कों द्वारा संभव नहीं है। उन्होंने नैतिक चेतना पर ही बल दिया। कांट के अनुयायियों ने भी इसका समर्थन किया। बाद में चलकर फलवादी सिद्धांत का विकास भी संकल्प मूलक पक्ष के आधार पर ही देखा जाता है। विलियम जेम्स ने सत्य की व्याख्या मूल्य के आधार पर की। सत्य वह है जिसकी वैधता हो तथा जिसका समर्थन किया जा सके। सबसे अधिक समर्थन रिचल के सिद्धांत को मिला। रिचल के अनुसार ईश्वर विचार की स्वीकृति सैद्धांतिक ज्ञान न होकर व्यवहारिक विश्वास है। संकल्प के पक्ष में यहाँ तक कहा जाता है कि इसके अभाव में किसी भी प्रकार का विचार संभव नहीं हो सकता। भावना के लिए भी इच्छा वृत्ति पृष्ठभूमि के रूप में काम करती है। धार्मिक चेतना में संकल्प की प्रधानता देखी जाती है। मानव जीवन में मूल्यों का महत्व है। परम शुभ सर्वोच्च मूल्य है। मनुष्य इस परम शुभ की प्राप्ति के लिए ही धार्मिक जीवन में प्रविष्ट होता है। इसके लिए मानव प्रकृति की संकल्प वृत्ति को ही उत्तरदायी कहा जा सकता है। मनुष्य का सक्रिय एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन ही धार्मिक चेतना के विकास और प्रगति में सहायक होता है। आदिम धर्म की भावनाएं बाद में चलकर आदर्श के रूप में संकल्प के कारण ही परिवर्तित हुईं। यही नहीं, धर्म में अस्थायित्व निरंतरता तथा वास्तविकता संकल्प के कारण ही देखी जाती है। संकल्प के कारण ही धर्म में कर्मकांड क्रिया विधान एवं धार्मिक संस्थाओं का उद्भव पाते हैं। वैसे भी संकल्प विहीन धार्मिक विश्वास धर्म की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। धर्म वह है जो किया जाए या जीवन में उतारा जाए। यदि किसी विश्वास और विचार को क्रियान्वित न किया जाए तो उसका कुछ भी महत्व नहीं है। वस्तुतः देखा यही जाता है कि जिसकी अनुभूति होती है या जिस पर हम विचार करते हैं बाध्य होकर उसको क्रिया में अवश्य परिणत करते हैं। धार्मिक जीवन में भी यही देखा जाता है। धार्मिक व्यक्ति सत्ता के प्रति विश्वास रखकर आस्थावान होता है और अपनी आस्था तथा विश्वास को पूजा कर्मकांड तथा क्रिया विधान में प्रकट करता है। इसी का फल है कि मंदिर मस्जिद चर्च तथा मूर्ति पूजा का विकास धर्म के अंतर्गत देखा जाता है। प्रतीकों की उपयोगिता धर्म में कम नहीं है। संकल्प का ही प्रभाव है कि प्रतीकवाद का विकास हुआ है। विभिन्न चिन्हों शब्दों तथा ईश्वर गीतों का कारण इसी वृत्ति को माना जा सकता है। सारांश यह है कि धार्मिक चेतना के गठन और अभिव्यक्ति में संकल्प ही महत्वपूर्ण है। अतः संकल्प ही धर्म के लिए प्रधान है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला है संकल्प के लिए विचार का निर्देशन आवश्यक है। यद्यपि संकल्प मूलक पहलू को मानव अनुभूति से विलग करना असंभव है, परंतु तर्क या विचार से अलग संकल्प अंधा है। केवल इच्छा शक्ति या संकल्प बिना निर्देशन, लक्ष्य या उद्देश्य के कुछ भी नहीं है। ज्ञान, भावना तथा संकल्प की संतुलित क्रिया से ही मानव विचार और जीवन की सच्ची व्याख्या की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 115। दूसरा है, ज्ञान के अभाव में कर्म या व्यवहार यंत्रवत हो जाता है। संकल्प को ही एकमात्र धर्म का आधार मानना उचित नहीं है, क्योंकि बुद्धि या विचार के अभाव में धार्मिक व्यवहार यंत्रवत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप धर्म की आंतरिकता समाप्त हो जाती है। अब बिंदु तीसरा है, व्यवहार की प्रधानता से धर्म में संकीर्णता। जब धर्म में संकल्प वृत्ति ही प्रधान हो जाती है तो व्यक्ति कुछ कार्यों के लिए बाध्यता का अनुभव करने लगता है, फिर धर्म उन्हीं कार्यों तक सीमित माना जाने लगता है। मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड इसके उदाहरण स्वरूप हैं। अतः सिद्ध है कि संकल्प को धार्मिक चेतना में प्रधान नहीं माना जा सकता। अगला शीर्षक है, वास्तविक स्वरूप। उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि भावना, बुद्धि तथा संकल्प इन तीनों वृत्तियों का धार्मिक चेतना में योगदान है, परंतु विभिन्न समयों में इनमें से एक या दूसरा प्रधान हो सकता है। परंतु जैसा कि सेलेवी ने कहा है कि इनको अलग अलग किसी कक्ष में नहीं रखा जा सकता और न तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य ही करते हैं, इनको चेतन जीवन की इकाई के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि क्रिया में ये तीनों रहते हैं और किसी विषय की ओर तीनों ही चालित होते हैं। अतः धर्म के आधार के रूप में किसी एक को नहीं माना जा सकता। मनुष्य के मस्तिष्क में ये संपूर्ण के रूप में कार्य करते हैं। धर्म संपूर्ण मानव व्यक्तित्व का प्रकाशन है और चेतना के सभी पहलुओं की देन है। धार्मिक चेतना के विभिन्न अंगों के समन्यात्मक पक्ष पर बल देते हुए केयर ने भी कहा है कि आध्यात्मिक एकता को उस भंडार या यंत्रों के बक्स की तरह नहीं समझा जा सकता, जिसमें बहुत से औजार आसपास रखे गए हैं। यह एक ऐसी एकता है जिसमें विभिन्न तत्व आवश्यक रूप से एक दूसरे को समाविष्ट करते हैं। लक्ष्य की ओर इन तत्वों का समन्यात्मक प्रयास ही रहता है। गैलवे के शब्दों में मानसिक जीवन के विभिन्न पहलू शायद ही समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। किसी एक तत्व की अधिकता से दूसरा तत्व मंद पड़ जाता है और एक विशिष्ट प्रकार का धर्म पहचान में आने लगता है। जैसे जब भावना की प्रधानता होती है तो धर्म का रूप रहस्यात्मक हो जाता है, जब विचार की प्रधानता होती है तो धर्म का रूप बौद्धिक हो जाता है, और जब संकल्प प्रधान होता है तो धर्म का रूप व्यवहारिक हो जाता है। परंतु गैलवे का कहना है कि धार्मिक चेतना का पूर्ण एवं वास्तविक स्वरूप तभी प्राप्त हो सकता है जब धार्मिक चेतना के तीनों पहलू भावना, ज्ञान और संकल्प में समुचित समन्वय हो। अगला शीर्षक है धार्मिक चेतना का विषय। इसके अंतर्गत शीर्षक है धार्मिक ज्ञान तथा परम सत्य की प्राप्ति। धार्मिक चेतना के वास्तविक स्वरूप पर पहुँचने से यही प्रतीत होता है कि इसका विषय, जिसकी ओर धार्मिक चेतना उन्मुख होती है, धार्मिक ज्ञान तथा परम सत्य की प्राप्ति है। व्यक्ति का सारा प्रयास, धार्मिक जीवन जीने की सारी अभिलाषा इसी परम सत्य की प्राप्ति के लिए ही देखी जाती है। मनुष्य अपनी धार्मिकता में पूर्ण संतोष चाहता है। यदि धार्मिक चेतना का एक ही पहलू प्रधान होकर व्यक्ति की ओर उन्मुख करता है तो व्यक्ति का लक्ष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न पहलू धर्म के विषय की ओर संगठित होकर कार्यरत हों। किसी एक पक्ष से धर्म जीवन का प्रयास एकांगी माना जाएगा और सत्य का वास्तविक स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 116। धर्म में आध्यात्मिक सत्ता का बोध होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक वृत्ति बिना इस सत्ता की प्राप्ति के संतुष्ट नहीं हो सकती। आदिम धर्मों में केवल भावना और संकल्प की वृत्ति ही प्रधान थी। अतः पूर्ण विवेक के अभाव में धार्मिक चेतना का विषय परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकी। उच्च आध्यात्मिक धर्म इस दृष्टिकोण से संकीर्णता से ऊपर है। इसका एकमात्र लक्ष्य परम सत्ता की प्राप्ति ही है। यहाँ इतना और भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह धार्मिक ज्ञान तथा परम सत्ता केवल वैयक्तिक स्तर पर ही प्राप्य नहीं है, बल्कि सामूहिक या सामाजिक स्तर पर उतरना और सत्ता का सर्वत्र भान करना भी आवश्यक है। तभी धर्म व्यापक और ग्रहणीय हो सकता है। इसीलिए सच्चा धार्मिक व्यक्ति परम सत्ता का बोध करके कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। यदि मूल्य की दृष्टि से कहा जाए तो धार्मिक चेतना का विषय सर्वोच्च मूल्य या परम शुभ ही है, जिसे सत्यम, शिवम तथा सुंदरम के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर सत्यम, शिवम, सुंदरम का ही प्रतिरूप है। वही सच्चिदानंद है। विचार से सत की प्राप्ति, संकल्प से शिव तथा भावना से सुंदरम की प्राप्ति होती है। परंतु अकेले न सत का ही महत्व है, न शिव और न सुंदर का ही। इनका समन्यात्मक रूप ही सर्वोच्च विषय है, जिसे धार्मिक चेतना प्राप्त करती है। अगला शीर्षक है रुडॉल्फ ऑटो द्वारा धार्मिक चेतना की व्याख्या। ऊपर हमने धार्मिक चेतना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है, परंतु ऑटो ने एक विशेष प्रकार की धार्मिक चेतना की व्याख्या की है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। ऑटो ने अपनी पुस्तक दी आइडिया ऑफ दी होली में धार्मिक चेतना को पूर्णतया अबौद्धिक बतलाया है। इसको इन्होंने नूमिनस की संज्ञा दी है। नूमिनस एक रहस्यपूर्ण अवर्णनीय एवं पूर्ण सत्ता की अनुभूति है। भारतीय विचारकों के समान ऑटो भी इस अनुभूति को तर्कातीत मानते हैं। यह स्वयं सिद्ध है। इसे तर्कों द्वारा सिद्ध करने की न तो आवश्यकता है और न तो सिद्ध ही किया जा सकता है। जिसको यह अनुभूति नहीं है उसको बुद्धि द्वारा विश्लेषित करके समझाया नहीं जा सकता। जहाँ ह्यूम धर्म को भय की भावना पर आधारित करते हैं, स्लायर माखर ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता की भावना को धार्मिकता का आधार मानते हैं और हाफडिंग मूल्यों के संरक्षण को धार्मिक चेतना के अर्थ में लेते हैं, वहाँ ऑटो इनसे भिन्न नूमिनस को ही धार्मिक चेतना का नाम देते हैं। अस्पष्ट है कि ऑटो का विचार सर्वथा अन्य विचारकों से भिन्न और अनोखा है। इसकी व्याख्या भिन्न ढंग से की जा सकती है। ऑटो के अनुसार इसकी व्याख्या सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर भी नहीं की जा सकती। यद्यपि ये सभी तत्व धार्मिक जीवन में गौण रूप में वर्तमान रह सकते हैं, मूल्य की दृष्टि से यह पवित्र या होली है, परम शुभ है। इसमें नैतिकता तथा बौद्धिकता का प्रवेश नहीं है। इसी होली शब्द के लिए नूमिनस शब्द को चुना गया है। नूमिनस अपनेपन का विशिष्ट है। यह दूसरे किसी रूप में घटित नहीं किया जा सकता। यद्यपि ऑटो धर्म में नैतिकता और बौद्धिक तत्व के महत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में धर्म अबौद्धिक तथा नैतिकता से परे है। यह पूर्णतया रहस्यमय और अनूठी अनुभूति है। इसकी तुलना हम किसी दूसरी सत्ता से नहीं कर सकते। इसीलिए ऑटो ने इसे पूर्णतया परे की सत्ता या होली अदर कहा है। संक्षेप में इसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट कर सकते हैं, जिससे ऑटो की धार्मिक चेतना का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इसमें पहला बिंदु है पूर्ण और रहस्यमयी है। अपूर्ण मानव इस पूर्ण सत्ता का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। यह रहस्यमयी है, इसलिए अनूठी और अलौकिक है। यह जागतिक वस्तुओं की तरह नहीं जानी जा सकती। पृष्ठ संख्या 117। बिंदु दूसरा अवर्णनीय है। यह अबौद्धिक है, इसलिए इसे बुद्धि द्वारा भाषा के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता। इसकी अनुभूति में जो आह्लाद और आनंद की भावना होती है उसे शब्दों द्वारा प्रकट करना असंभव है। साधारण संवेग को तो प्रकट किया जा सकता है, परंतु यह व्यक्तिगत होते हुए भी बौद्धिकता के अभाव में अवर्णनीय है। बिंदु तीसरा है मूल्यों और नैतिकता से परे। पूर्णतया परे की सत्ता होने से मानवीय मूल्यों की श्रेणी में भी इसको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। यह परम शुभ होते हुए भी सत्यम शिवम सुंदरम से परे है। बिंदु चौथा है अपनेपन की विशिष्ट और स्वनिर्मित। यह संसार की सभी वस्तुओं से भिन्न और परे होने के कारण अपनेपन की विशिष्ट तथा स्वनिर्मित अनुभूति कही जा सकती है। यह किसी दूसरी वस्तु में घटित नहीं की जा सकती। बिंदु पांचवा है पूर्णतया अबौद्धिक। संसार की सभी वस्तुएं बुद्धि से जानी जा सकती हैं। नैतिकता, कला तथा विज्ञान आदि का बुद्धि द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु धार्मिक अनुभूति तर्कातीत तथा अबौद्धिक है। इसलिए भावना के राज्य में रहकर रहस्यमयी हो गई है। इसको व्यक्त करना संभव नहीं है। व्याख्या और विश्लेषण में बुद्धि का काम है शुद्ध भावना मूलक और रहस्यात्मक होने के कारण यह विश्लेषित नहीं की जा सकती। अगला शीर्षक है आलोचना। डी एम एडवर्ड ने ऑटो द्वारा प्रस्तुत धार्मिक चेतना की कटु आलोचना की है। इनका कथन है कि यदि ऑटो बतलाते हैं कि धार्मिक चेतना अबौद्धिक और नैतिकता से परे तथा अवर्णनीय है, तो यह उनकी धर्म के प्रति सेवा नहीं कही जा सकती। उससे तो ऑटो ने धर्म को गुंगा तथा अस्पष्ट कर दिया है। वास्तव में धर्म की प्रगति का अर्थ तो नूमिनस की अनुभूति को सत्यम शिवम सुंदरम की श्रेणी में रखकर स्पष्ट करने से ही प्रकट होता है। ऑटो का सत्ता को अवर्णनीय कहना स्पेंसर तथा अज्ञेयवादियों के साथ सत्ता को अज्ञात तथा न जानने योग्य बताना है। दूसरी ओर ऑटो ने नूमिनस को पूर्णतया परे की सत्ता घोषित किया है। वह हमारे अनुभव और ज्ञान से परे है। वह पूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, उसे जान ही नहीं सकता। यदि यही बात है तो धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता पिता तथा रक्षक माना जाता है और भक्त उससे तादात्म्य स्थापित करता है। फिर यह सब कैसे संभव है? ईश्वर रहस्यात्मक और पराशक्ति होते हुए भी भक्तों का सब कुछ होता है। भक्त उससे निकटता का अनुभव करते हैं। क्या ऑटो की मान्यता से धर्म में यह सब संभव कहा जा सकता है? यदि ऑटो के अनुसार यह संभव नहीं है तो धर्म की गति अवरुद्ध हो जाएगी। चूंकि धर्म में प्रगति होती रही है, इससे सिद्ध होता है कि ऑटो की धारणा पूर्णतया मान्य नहीं हो सकती। अध्याय 5 समाप्त।